नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। सबका साथ सबका विकास, जनता के आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बजट का आधार और सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने एक सशक्त अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया, जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार का आयोजन किया। केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस 2 की स्थापना और देश भर के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने पर विचार विमर्श के लिए यह वेबिनार आयोजित किया गया था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस सदस्य मोहम्मद जावेद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने संबंधी प्रस्ताव पेश करने को कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री पाल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर शून्यकाल के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर पहले ही बयान दे चुके हैं और इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। उधर पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार ने महंगाई को काबू में रखने और आम जनता को राहत देने के लिए राजकोषीय, व्यापार नीति और कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं। लोकसभा में आज लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का मुद्रास्फीति पर मध्यम अवधि का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें विनिमय दर में उतार चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का संचरण तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव सीमा शामिल हैं। ईरान के साथ अमेरिका इसराइल संघर्ष तेज होने से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए G7 देशों ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव सहित प्रमुख देशों के वित्त मंत्री लगातार बढ़ते संघर्ष के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते कच्चे तेल की आपूर्ति में दीर्घकालिक व्यवधान की आशंकाओं के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सहित प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है और इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी या समय सारणी में बदलाव हो सकता है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले संबंधित एयरलाइनों से ताजा जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी है। हवाई अड्डे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य सभी उड़ानें निर्धारित समय पर चल रही हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज यादव और पवन सिंह के रूप में हुई है। हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर के पूल बी के दूसरे मैच में आज भारत का सामना शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।